اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں، وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنی رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا ان میں قریب تر ہے، یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ہستیاں تو خود وسیلہ تلاش کرتی ہیں، وہ ہستیاں خود اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتی ہیں، یعنی جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، ظاہر ہے وہ جو نیک لوگ ہیں جن کو یہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے ہاں، وہ تو خود اپنے رب کے نزدیکی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کی پیر مبارک سوج جاتے تھے کھڑے ہو کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلے پچھلے سب معاف ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہے قرب۔ اب وسیلہ ہم اردو میں سمجھتے ہیں، اردو والا وسیلہ نا اس کو سمجھیں کہ وسیلہ راستہ، یعنی جو بھی راستہ ہم اپناتے ہیں کسی تک پہنچنے کا، کیونکہ ہم نے یہ جب کانسیپٹ سمجھا تو ہم نے کہا فلانے کو وسیلہ بنا لو، فلاں کو وسیلہ بنا لو۔ وسیلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے والے اعمال ہیں، اس میں سارے نیک اعمال آ جاتے ہیں۔ تو جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے بزرگوں اولیاء اللہ، کوئی جن ہو، کوئی کچھ بھی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے قرب ان کو حاصل ہو جائے اور کون ان میں زیادہ قریب ہو جائے۔ فرشتے تک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے تک اللہ سے ڈرتے ہیں، یرجون رحمتہ، وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وہ یخافون عذابہ، اور وہ اس کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی یہ نیک لوگ ہیں نا، یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو، وہ والے نہیں جو یہ سوامی رامی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھی پیغمبروں کو جیسے بنایا ہوا ہے یا فرشتوں کو بنایا ہوا، وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ہاں اور میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جا سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے تو کام اتنے ہیں، میں تو نبی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، اب تم لوگوں کا نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن میں تو ظاہر ہے جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، وہ ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، فرمایا میرے لیے دعا کرو۔ ہم کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو وسیلے کی، اور اسی لیے ہم اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی اور وسیلہ کی، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم ان کو وسیلہ بنا لیں۔ وسیلہ مطلب ہے کہ ہم نیک وہ اعمال کرتے تھے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے تھے، تم نے ان کو وسیلہ بنا لیا، وہ تو خود نیک اعمال کی تلاش میں رہتے تھے، تم نے اس کا کوئی اور ہی مطلب لے لیا۔ تو جو رسول ہے، جو اللہ کے آلریڈی اتنے قریب ہوتے ہیں، وہ بھی اور مزید قربت کی تلاش میں رہتے، مگر ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا، ہم تو قریب ہیں بھی نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں، بجائے کہ ہم بھی قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کریں، بجائے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ تک قربت کا راستہ اختیار کریں۔ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی حالت بتائی گئی، یہ ان کی حالت ہے، یہ تین کام ان کے بتائے گئے کہ جب وہ دنیا میں تھے نا، تو وہ خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کی طرف دوڑتے تھے، وہ خود اللہ سے رحمت کی امید رکھتے تھے، وہ خود اللہ کے عذابوں سے ڈرتے تھے، ایون فرشتے اللہ کے عذابوں سے ڈرتے، جبکہ ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ سے ڈرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، उसकी यानी अजबत को आप सल्लम से ज्यादा और कौन जानता था, फरमाया ना तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला, अपनी बेटी को फरमाया, अपनी पप्पी को फरमाया कि तुम दुनिया में मेरे से कुछ ले लो लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं। वो खुद इतना डरते थे क्योंकि इतना अजाब, और अभी तक कहा ना महदूरा, अल्लाह ताला का अजाब है ही इस लाइक के उससे डरा जाए। हम कितने बेखौफ है ना, हम कहते हैं डराओ ना हमें, हालांकि कुरान कहता है अल्लाह का अजाब इस लायक है कि उससे डरना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए इससे, लेकिन हमारे अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और वो जितना जिनको हम पहुंची भी हस्तियां समझते वो डरते थे, वो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए वसीला तलाश करते थे। अब वसीले से यहाँ पे बात पता चलती है कि हमें वो वाला जो वसीला बताया जाता है जी फलाने के वसीले से मांग लो, फलाने के वसीले से मांग लो, वो वसीला नहीं है। वसीला तो हमें जो हदीस में बताया गया वसीला तो वही होगा ना जो हमें बताया गया, वसीला वही चीज काम वाली होगी जो हमारे नबी ने बता दी। खुद ही बता देना कि वसीला ये है वसीला वो है, ये तो सही नहीं है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और क्या बता दिया वो हमें, वल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है उससे अल्लाह ताला को पुकारो, ये है वास्ता देना, यह वसीला लेना उसके नामों के जरिए। फिर नंबर टू ये अपने नेक अमाल का वास्ता, तो उनको वसीला बनाओ जैसे वो गार वाले लोगों ने बनाया था, हदीस में मौजूद है, इसकी दलील मौजूद है, ये गार वालों के किस्से से उन्होंने अपनी नेकियों का वास्ता दिया था अल्लाह को, इनको वसीला बनाया था अल्लाह ताला तुझे मेरी ये नेकी अगर पसंद आई हो तो अल्लाह ताला तू इस पत्थर को हटा दे। उन्हें ये तो नहीं कहा था फलाने की नेकी जो फलाने बुजुर्ग ने की है वो बुजुर्ग इतने नेक है तो उनके सदके हमारा ये काम कर दे, उनके वसीले हमारा ये काम कर दे, मैं तो जो उनका वास्ता देता वो भाई उनकी नेकियां उनके साथ है, वो अपनी नेकियों का वास्ता देते, आप अपनी का देंगे, आप ये कहेंगे मेरा कोई नेक अमल, अल्लाह मैंने ये रोजा रखा, या अल्लाह मैंने ये कयाम किया, या अल्लाह मेरी जो मोहब्बत तेरे रसूल के लिए है ये मेरे अमल है ना, आप अपने अमलों को वास्ता बना सकते हैं। इसी तरह नंबर थ्री, ये किसी भी नेक आदमी है जो मुत्तकी आप जिसको समझते हैं उसको आप दरख्वास्त कर सकते हैं जिंदा को कि मेरे लिए दुआ कर दें, दुआए सालेहीन एक जायज किस्म है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सहाबा आते थे और कहते थे कि हमारे लिए दुआ करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उन्होंने जाकर कब्र पे नहीं दुआ मांगी, कब्र पे जाकर खड़ा नहीं होकर कहा कि हमें आपके वसीले से, वो फिर अल्लाह से मांगते थे, या फिर जब बारिश की दुआ करनी थी तो हज़रत उमर ने फरमाया आप सल्लम के चचा अब्बास को वसीला बनाया, उनकी दुआ को वसीला बनाया कि अब आप दुआ करें, जब आप सल्लम होते थे उनसे हम दुआ के लिए कहते थे, अब आपको हम कहते हैं, यानी नेक और साले अपने से ज्यादा आप जिसको समझते हैं, आप तो समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के हाँ एक बड़ी नेकियां करने वाला आदमी है तो उसको आप दुआ के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे कि आप जो दुनिया से जा चुके हैं उनको वसीला बना, जबकि हम तो देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला समी और बसीर है, अल्लाह सबकी सुनता है, हमें ये वाला किसी इंसान को बीच में डालने की जरूरत ही नहीं कि हम हमारी आपकी आगे आपकी अल्लाह के आगे, ये होता है कॉन्सेप्ट जब उनको नहीं कह रहा होते कि वो कहते हम इनसे तो नहीं मांगते, हम तो कह रहे हैं हमारी आपके आगे आपकी अल्लाह के आगे, ये इसकी जरूरत ही नहीं, जो वसीले के हमें बताया था वही हम करें। आप देखिए सुभान अल्लाह सहाबा कैसा ईमान था, उस सहाबी के बारे में आता ना अबू मुगला नामी जो सहाबी है उनके बारे में आता ना, डाकू ने उनको पकड़ लिया, उनसे माल छीन लिया, उन्होंने कहा माल मेरे से ले लो लेकिन मेरी जान बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो। उसने कहा जो माल तो मैंने ले ही लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम जाके शहर में भी शिकायत लगाओगे, वहां से सरकारें आके मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ने कहा फिर एक काम मुझे करने दो, मुझे दो सजदे करने की इजाजत दे दो। उसने कहा ठीक है कर लो। सजदे में गए हैं या मुगीथु अगिसनी, या मुगीथु अगिसनी, या मुगीथु अगिसनी, ऐ फरियाद रस मेरी फरियाद रसी कर, मेरी फरियाद रसी कर, ऐ फरियाद रस मेरी। हमने तो गौस किसी और को बनाया था ना, गौस तो अल्लाह ताला है, हम कहते हैं गौस ए आजम सबसे बड़ा फरियाद रस, फरियाद सुनने वाला, फरियाद पूरी करने वाले तो इनको बनाया हुआ अब्दुल कादिर जिलानी को रहमतुल्लाह अलैह। उनका अकीदा तो ये नहीं था ना, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं ये कहते थे कि वो गौस है, हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती को गौस बना दिया, तो गौस तो अल्लाह ही है। तो या मुगीसु अगिसनी, ए बॉस तू जो है फरियाद रस, तू मेरी फरियाद रसी कर, यहाँ ये पुकार रहे हैं। और सार उठाया सज्जे से तो देखा तो डाकू जो है ना वो मरा पड़ा, और पास एक नौजवान खड़ा हुआ, पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तुमने पहली दफा कहा या मुगीसु अगिसनी, तो अल्लाह ताला ने इस पुकार को बुलंद किया आसमानों तक और फरिश्तों में खलबली मच गई, और हर फरिश्ता ये कह रहा था कि अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं जाऊं और मैं जाके इसकी मदद करूं। हर फरिश्ता ये पुकार रहा था, अल्लाह अगर तूने इसकी मदद करने का फैसला किया, इरादा किया, तो अल्लाह मुझे इजाजत दे। तो अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया, तो मैंने इस डाकू को ढेर कर दिया। देख लेना इंसान की जो सच्चे दिल से दुआ होती है वो कहां तक पहुंचती है। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार भी। वो बात हमारे अंदर अगर आ जाए ना ये ईमान, तो आज भी फरिश्ते उतर सकते हैं। हम कहते नहीं अल्लाह तो बड़ी दूर है और हम उसको कैसे पुकारे, हम तो वसीला जब तक नहीं बनाएंगे। देखो सीढ़ी चाहिए होती है किसी तक पहुंचने के लिए, वजीर तक पहुंचने के लिए। वो वजीर तो इंसान है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी चाहिए, कोई चौकीदार, कोई क्लर्क को आप कहते हैं तो वो आगे जाता है। अल्लाह ताला को तुमने इंसानों की तरह समझ लिया, वो तो समीअ और बसीर है। वजीर तो तुमसे दूर है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं करीब हूं तुमसे, फिर भी जाके उनके पास चल के जाते हैं। या फिर ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ पे जो दुनिया से जा चुके हैं वो हमारी यहाँ पे मदद, या फरुल्ला मदद, या अली मदद, या अली मदद तो बहुत आम है, या अली मदद, या गौस मदद, किससे मांगा जा रहा है इसमें? कहते हैं हम नहीं अल्लाह से ही मांगते हैं ना, हम तो नहीं किसी और से मांगते, ये किससे मांगा जा रहा है? या अली मदद किससे मांग रहे हैं आप, उसका तर्जुमा तो करें, इतना तो आता ही होगा ना। या गौस मदद की क्या मतलब है इसका? तो ठीक है, दुआ के अंदर जो वसीले की इजाजत है, वो भी वो वसीले की इजाजत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, खुद नहीं, खुद ही वसीलों की तर्जमे करके खुद ही बना लेना। तो इबादत ये भी इबादत है, इसलिए कि दुआ जो है वो इबादत है, बल्कि मुखल इबादत है, इबादत का मगज है, असल जड़ है इबादत की, इबादत का जिस्त है। अगर दुआ ही आपने किसी और से मांग ली तो किसी और की इबादत कर ली। जो ये कहते हैं कि हम दुआ तो अल्लाह से करते हैं मगर इनके जरिए से करते हैं, तो यही तो मुशरिकीन भी कहते थे कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। सूरह ज़ुमर आयत 3 निकाल के देख ले, मुशरिकीन के बारे में क्या कहा गया। तो तौहीद का चैप्टर ना बहुत क्लियर है, ऐसी कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है।